करुणा प्रचुर। जीजा नीला प्रेम धन इन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर इन प्रभु मोर एक काले कोता गेला गौर नट एक कटरा आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय जय वृंदावन दास जय वृंदावन दास आज प्रभु आज प्रभु पा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु भक्ति विदन स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। वृंदावन दास ठाकुर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
38
नारायणं नमस्तुत्य दिविं सरस्वतीं सुदासुरगणेभ्यः गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया आरुह्य प्रययाब्धिं सुदासुरगणेभ्यः गरुडे हसारुज्य प्रज्यया अब्धिं कहते उन विरोचन के पुत्र इत्यादि और साथ में देवतागण जो भी थे शक्र इत्यादि शक्र कहते हैं इंद्र को सौ यज्ञ करने वाले शक्र है इससे इंद्र को इंद्र ऐसा नाम नहीं लिखना पड़ता है साइन करना तो शक्र इत्यादि साइन कर देते वो इतना भारी था सबास सबास बोलते हुए भी उठा नहीं सके और उनको पटक दिया कहते ना पटक टूट गया यह क्रमा कर ले और कितना भी वंदन स्तुति नति कर ले भगवान को लेकिन अंत तक कृपा के पर निर्भर है भगवान की कृपा जब होगी तब वस्तुतः जीव का काम बनेगा अन्यथा वो काम नहीं बनेगा। चलो प्रभुपाद महाराज हमने तात्पर्य में देवता और असुर की मानसिकता को भिन्न बताया है तो देवता लोग शरण चले जाते हैं भगवान के जब नासी पास होते हैं तो भगवान को याद करते हैं लगता है यहाँ भगवान को याद देवताओं ने किया इसलिए आ गए ऐसा लगता है कोई आचार्य नहीं लिखे हैं इसके विषय में चुप लेकिन भागवतम के कुछ श्लोक से कुछ न कुछ बातें ध्वनित तो होती है जैसे श्री प्रभुपाद महाराज के पटपट से ध्वनि निकल रही है कि तो क्या असुर थोड़ी याद करेंगे भगवान को अरे कहां यार इनके पेट में पड़ गए लेकिन देवताओं को विश्वास था अरे भगवान हेल्प करेंगे है ना और भगवान का चिंतन देवता लोग किया होगा। तो तांस तथा भग्न मनसो भग्न बाहुर उरुस्कंदरान कहते विज्ञाय भगवान स्तत बबू गरुद्वज। तो उसी समय इन टूटे हुए सारे अंग उपांग को और मन भी भंग हो गया है, उत्साहत हो गया है, तो ये जान करके विज्ञाय भगवान स्तत्र बबू व गरुड़ध्वज। तो भगवान उन गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के उनके सामने प्रकटित हो गए। और सबने देखा, अश्रु ने देखा, यार कहाँ फंसा दिया करके, इधर देखो कहीं मारे गए, आप लोग जिंदा नहीं करेंगे। भगवान बोलता आप लोग का आदमी जिंदा नहीं होगा, जो बचे उनको ठीक है। हाँ, देवता लोग के ऊपर तो हमें दृष्टि डाला जाएगा। गिरिपाद निविष्ट कहते विनिपिष्टान विलोक्यान अमरदानवान इक्षिया जीव्याम अस निर्जरान निर्वरणान यथा। अब भगवान ने सबसे पहले जो लोग मर गए थे तो उनको जरा पर्वत हिला करके बाहर निकाला, थोड़ा साइड रखा पर्वत को एक साइड करके, देखा कि यार इधर तो चटनी हो गया है कुछ तो। लेकिन भगवान ने अमित दृष्टि डाला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि कहते कि कई देवता देवता लोग को झिला लिया अपने अपने आप को और बाकी मारे गए सो गए। ये कर्म का हिसाब है संसार में। अगर जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं ना, उनको भगवान अमित दृष्टि उनके ऊपर होती है, और बाकी गया गया, उनको कौन पूछेगा कहाँ गया 84 लाख योनि में। लेकिन जो भगवान का नाम भी लेते हैं केवल, उनको भगवान रक्षा देते हैं, बोले अगले जीवन में कम से कम मनुष्य बनाया जाए ताकि वो नाम ले सके, क्योंकि संसार में कौन भक्ति करता है, केवल उंगली पर गिन लीजिए उतने ही है मात्र। 99% लोग नहीं करते हो, नहीं करने वाले हैं। एक पॉइंट में भक्त लोग आते हैं, और संसार भगवान ने भक्तों के लिए बनाया है, भक्ति करने के लिए बनाया है ना। अब उनकी तो रक्षा करना है उनको, इसलिए एक दो बार नाम लिया ना, उनको भी मनुष्य जन्म दे देते। एक बार संसार सत्संग में बैठा है, बोले वृंदावन घूमने के लिए गया था, ओहो कोई बात नहीं, और वो भी हरिकृष्ण मूवमेंट में सत्संग में बैठा था, ठीक है मनुष्य शरीर ले लो, यदि भी नारकी काम किया है इस पर भी ये भगवत कृपा स्पेशल। परपट से आचार्यों के तात्पर्य से ये ध्वनित होता है। तो कहते इक्षिया जीव्याम आस, भगवान ने उनको देख करके जिला दिया। और असुर ने सोचा कि यार ये कोई बात ना, अपना जितने मारे गए मार गए, लेकिन अमृत तो मिलेगा है। तो जितने थे और वो जानते थे कि अभी देवताओं की हेल्प के लिए तो लगेंगे ही लगेंगे, कष्ट कम होगा हम लोग को, चलो वे लोग भी कहते कि निर्जरान निर्वरणान यथा। कहते उनको पहले तो उनके हृदय में उत्साह भरा भगवान ने, आगे सारी कथा आएगी किस प्रकार उत्साह भरा, इस बात को उस समुद्र मंथन के समय पता चलेगा। देवताओं के अंदर सत्गुण के रूप में भगवान प्रवेश किए, असुर में रजगुण के रूप में, और वासुके में तमोगुण के रूप में, और देवताओं की साइड भगवान खड़े रहे। समुद्र मंथन देखिए, हर हालत में भगवान के ऊपर डिपेंड, और नीचे भगवान कश्यप के रूप में, ऊपर अजीत दबा करके रखा, और जाम चक्का अब कहां चले है ना। तो भगवान ने इस प्रकार कौतुक किया, सब में प्रवेश किया। उसी प्रकार हम में भी प्रवेश किए हैं भगवान, ध्यान रहे है ना। हम सब जो कुछ भी कार्य हम करते हैं वो हमारा कोई कार्य नहीं है, अहंकार विमुदात्मक करता अहम इति प्रकृति क्रियमाणानी गुणी कर्माणी, अपने गुणों के माध्यम से प्रकृति कार्य करती है, हम कुछ कार्य नहीं करते हैं। फालतू में हमें बैठ करके यश ले रहे हैं, किसी किसी वस्तु का कुछ काम ठीक हुआ तो यश ले रहे हैं, फालतू बात है ना। क्योंकि सबका सब कुछ कार्य प्रकृति में एकमात्र भगवान करते हैं और कोई नहीं, इससे उन भगवान के प्रति शरणागति या उनके किए गए उपकार को जब तक हम नहीं समझते हैं हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। या शरणागति हम कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनके उपकार को पहले समझिए कि कितना उपकार है हमारे प्रति। जगत में लोग माता पिता का उपकार मानते हैं, लेकिन उन माता पिता के जीवन दाता कृष्ण है उनको नहीं देखते, है ना। उसको लोग देखते नहीं है, नहीं माता पिता की सेवा ठीक है करनी चाहिए, लेकिन भगवान की तो करनी चाहिए ना, क्योंकि सबका चित्त से लेकर के सब कुछ जो कुछ भी है वो भगवान की मालिकी का है। बुद्धि हो या कोई मन का बल, इंद्रियों का ओजस, जो कुछ भी है वो समस्त भगवान की देन है, किसी अपनी प्रॉपर्टी। अरे स्वयं जीव उनका है, ये तो अहंकार के कारण हम लोग अपने आप को पृथक सोच करके भगवान के शरणागत नहीं हो रहे हैं। इससे बहुत मुश्किल है, जो लोग भजन करते हुए उनके प्रति शरणागत जब तक नहीं होते हैं ना, तब तक वो कर्तापन का भाव नहीं जाएगा, अथवा जब तक कर्तापन का भाव रहेगा तब तक व्यक्ति शरणागति प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कर्तृत्व के समुद्र में अपने अहंकार को मिला देना चाहिए। श्री कृष्ण कर्तृत्व के समुद्र है और अपने कर्तापन के भाव को उनको समर्पित करना चाहिए। मानस दे गे जो किछु मोर, अर्पिलु तुया अपदे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य उनके कीर्तन में हमको शिक्षा देते हैं कि उन्हें शरणागति कैसे प्राप्त की जाए। देखिए बहुत सुंदर शरणागति के भजन है, हमारे पास इतना समय ही नहीं है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार जब तक व्यक्ति शरणागत नहीं होता है तब तक व्यक्ति का काम नहीं बनता है। तो गिरिम चारुप गरुड़े हस्ते लीलिया आरुज प्रया अब्जुम सुरासुर गणे वृत। तो इस प्रकार भगवान यहां पर कहते हैं कि उन गिरी को उन गरुड़ के स्तन पर एक हाथ से लीला पूर्वक रख दिया। अब सब मिल करके शाबाश शाबाश कर रहे थे, लेकिन हिलता भी नहीं था वो। अरे भगवान ने एक हाथ से खटाक्ष से रख दिया, है ना। अरे जो इन सारे पर्वतों के साथ पूरी पृथ्वी को रसातल गई हुई थी और शुक्र का अवतार लेकर भगवान उनको अपनी शक्ति से उन जल पर स्थापित करते हैं, जो आज तक ऐसी की ऐसी बनी है। उस भगवान के प्रति जीव का समर्पण नहीं होता है, कहने का अर्थ ही है। श्रीमद् भागवतम में कुछ एकाध श्लोक और थोड़ी टीका में मैं जाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन क्या करें, दोनों बात मुझे दे दिया है, आज बोलना भी है। बहुत सुंदर वो टीका में श्री विश्वनाथ गिरी ठाकुर इसके उपयुक्त टीका लिखे हैं। ये नवम स्कंद के आखिरी अध्याय में उन भगवान के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद उन अवतार लीला का वर्णन करते हैं कि कृष्ण अवतार लीला का वर्णन करते हुए वो कुछ बातें बोले हैं। उसमें से एक श्लोक है 58वां श्लोक, ये 24:9-24:58 है। कहते हैं माया चेष्टन पुंस स्थिति उत्पत्ति अत्याय ही अनुग्रह निवृत्ति आत्मलाभाय चेष्टत है। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि इन सभी जीवों के लिए भगवान की जो माया शक्ति है उनका विलास सभी जीवों का जन्म जीवन और मरण का कारण है। उन माया का विलास देखिए सब कुछ आ गया, उसमें कुछ बाकी नहीं छोड़ा एक श्लोक में, लेकिन उनसे अलग वो जब अवतरित होते हैं तो ये जीवों के ऊपर अनुग्रह है। कहते हैं इसमें अनुग्रह स्तन निवृत्ति आत्मलाभाय चेष्टते, और उससे अलग माया से अलग भगवान की कृपा लीला ये प्रपंच लीला में एक कृपा लीला चलती है। हम लोग उनकी प्रपंच लीला में होते हुए भी उनकी कृपा लीला के अंतर्गत है, और जो कृपा लीला के अंतर्गत है उनको सीरियस होकर के सारी बातों को ग्रहण करना चाहिए, और भागवतम को तो एक एक वस्तु पर विचार करके ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा शरणागति नहीं आएगी। सवाल नहीं उठता शरणागति का, क्योंकि एक साइड हम भजन चालू है और एक साइड नहीं करने लायक काम भी चालू है, पश्चाताप हो ही नहीं रहा है। पश्चाताप वृत्ति द्वारा भजन जो होता है ना वो एक भिन्न भजन है जी। हमारे किए पर पश्चाताप होना चाहिए कि इतना समय मैंने बिता दिया, यह किया, अभी भी मेरा समय भोग में बीत रहा है। अपने आप को निंदा करते हुए व्यक्ति को भजन करना चाहिए, अन्यथा कैसे भजन में राग होगा, अनुराग कैसे उत्पन्न होगा। इसलिए हमारा इसे अनुराग रहित भजन चालू है। जब हो रहा है तो माला संख्या पूरी करने के लिए हो रहा है, जितना भी लंबा चौड़ा हो लेकिन संख्या पूर्ति के लिए हो रहा है। अनुराग नहीं है भगवान में, वो अनुराग होगा उनके उपकारों को समझ करके। देखिए ना, संसार में कोई कोई वस्तु एकाध फ्लैट सस्ता दिलाया वृंदावन में किसी ने, तो जीवन भर बेटे को भी बता के जाएंगे, जरा बेटा इसको ध्यान रखना। और जो जीवन दिया है, जो जीवन दे करके नहीं सब कुछ दिया है, उनके लिए नहीं ध्यान रखने के लिए बोलेंगे बेटा इनका भजन करना चाहिए ना। बेटा तो भोग की वस्तु है ना, बेटा तो भोग सप्लाई करता है इसलिए सप्लाई करता रहे और मैं भजन करता रहूं, वैसे ही चलेगा भजन। और इधर वृंदावन में आकर के भोग चालू रहेगा जी। सत्य बात है कि झूठ बता रहे हैं है? आप लोग पंडित लोग हैं, अपने मन को आप जानते हैं ज्यादा, हम तो इतना नहीं समझते हैं, और भगवान समझते हैं। यार खड़ी फास चल रही है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती डाकू वो भीतर अपनी टीका में बहुत सुंदर परपट में ये बातें लिखते हैं, अत्यंत सूक्ष्मता से इन सारी बातों को लिखते हैं। आइए थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं, यद्यपि मेरे पास समय बहुत कम है लेकिन तीस पर भी जाएंगे थोड़ा, क्योंकि इतना सुंदर टीका है। कृपया एवं हेतु अर्थ कहते कृपया एवं हेतुत्व कैमुत्यन दर्शयति यदि पुनः प्रकृति क्षण ईक्षण कर तुम माया चेष्टितम ईक्षणाधिकम कर्म जीवा नाम स्थिति अधि ही निश्चितम तच्चापि अनुग्रह। कहते हैं भगवान जो प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, वो सब जीवों के लिए करते हैं, अपना उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तभी से उपकार को समझिए भगवान के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जो ईक्षण करते हैं प्रकृति के ऊपर केवल बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, ये लोग मुक्त हो जाए मेरा भजन करें, केवल इसलिए। परीक्षण के लेकर के कहते हैं कि जब प्रकृति परीक्षण होता है तो उनके कारण जीवानाम स्थिति इत्यादि अर्थ, जीव की स्थिति, उनका जीवन या उनका जन्म जीवन और मरण, इसलिए ईक्षण करते हैं। लेकिन अनुग्रह या अनुग्रह क्या है तो कहते हैं, कहते निश्चितम तच्चा भी अनुग्रह अनुग्रहादि हेतु किम उत माया गंधेन अपि रहितम गोवर्धन धारण आदि चेष्टितम इति भाव। और अनुग्रह क्या है, वो जब यहाँ आकर के इन गिरिराज जी जैसे पर्वत को एक हाथ से उठा लेते हैं, जो अति मानवीय कार्य वो करते हैं और पूरे ब्रज की रक्षा करते हैं इंद्र से, ये उनका अनुग्रह है ठाकुर बता रहे, ताकि जीव उनकी लीलाओं का पाठ करे और लीलाओं के पाठ से उनका चित्त शुद्ध होता है, ये अनुग्रह है। बोला ना प्रपंच लीला के अंदर एक कृपा लीला चल रहा है, यही कृपा लीला है। श्रीमद भागवतम का पाठ इत्यादि जो हमको मिल रहा है, हम उनकी कृपा लीला के अंदर है, उनके अंतर्गत है। अब यहाँ चक्रवीर ठाकुर लिखते, जल्दी में फास्ट चल रहा हूं, वो कहते हैं कि ठीक है कि मुत माया गंधन आप रहितम गोवर्धन इत्यादि भाव। हाँ ठीक है, बुद्धि इंद्रियादिकम प्राप्त जीवा विषय भोगादिकम प्राप्त बनती इति या कृपा तत एव मायाम चिष्टतम इति अर्थ। देखिए बुद्धि इंद्रियों का भगवान ने सर्जन करके जीव को जो इस जगत भोग का मौका दिया ना, ये उन जीवों के ऊपर कृपा है। बोले एक ऐसी कृपा, पूर्व पक्ष उठा करके चक्रवर्ती ठाकुर आगे ये बात बता रहे हैं, कहते ननु विषय भोग हेतुभ्य स्थिति आदिभ्य पूर्ण संसार दुखम एवं शांति इत्यादि को यम अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह क्या है इसमें कि जीव को मन बुद्धि अहंकार दे दिया और वारंवार जन्म लेकर के भोग की इच्छा उनके चित्त में है और वारंवार जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे, क्या कृपा है भगवान का। बहुत सुंदर बात इन पक्ष उठा करके ईश्वर चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देखो हो, कहते ननु विषय भोगादि हेतु स्थिति पूर्ण संसार दुखन साधित न को अयम अनुग्रह सत्ता तन निवृत्त स्थिति अधिनम भक्ति ज्ञान वैराग्य निवृत्तिर आत्मनो भगवत जो लाभ तत् अर्थम चेष्यते बुद्धि इंद्रियादिकम बिना भक्ति ज्ञानादि न सिद्ध्यति जीव मात्र सुख रूपे हेतु अर्थ। ये जो मन बुद्धि अहंकार जो कुछ भी हमको दिया गया है भगवान के द्वारा वो सब भगवान की कृपा से मानना चाहिए। किस रूप में बोलते, जब तक मन बुद्धि इंद्रिय या कर्मेंद्रिय नहीं होगा जीव कैसे भक्ति कर पाएगा, ज्ञान भक्ति और वैराग्य वो कैसे प्राप्त कर सकता है जब तक उनके पास ये मन बुद्धि अहंकार नहीं रहेगा। तो हम लोग उनको लेकर के ये संसार का भोग करते हैं, हम नफट है। जिनको नाक नहीं है ना, ऐसे बिना नाक वाले हम लोग है, क्या है, लज्जा भी नहीं आती है, लज्जा भी देखिए इन भोगों में है ना। भगवान ने सब कुछ दिया वो भक्ति के लिए दिया है, लेकिन हम लज्जाहीन हो करके, नाक कान है ही नहीं, लज्जा है ही नहीं, भोग कर रहे संसार। वो भक्त लोग लगे हुए हैं, दूसरा तो जोड़ दीजिए यार, क्या क्या आइटम बना है उसको ध्यान में आएगा प्रसाद। मैं इधर नहीं बुद्धि लगाएंगे, जो बुद्धि दिया है आ सकती, लेकिन वो जा सकती है, जो आ सकती है ना वो जा भी सकती है। अगर वो आसक्ति को ट्रांसफर किया जाए भगवान में, उनकी लीला कथा में, जा सकती है, आराम से जा सकती है। देखिए ये कहते बुद्धि इंद्रिय मन प्राणन इत्यादि, वो कहते संसार दुखों में विसारिति न, कहते भगवतो जो लाभात अर्थ चेष्यते, जो भगवान की, भगवान को लाभ करने के लिए जिनकी चेष्टा होती है उनको आसानी के साथ भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए ये मन बुद्धि अहंकार सब कुछ दिया गया है। अब एक थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा चल करके बहुत सुंदर बात अपनी बात को प्रमाण करने के लिए, उत्तम बुद्धि इंद्रिय मन प्राणन जनानम असुरचित प्रभु, भगवान ने सब कुछ सर्जन किया इंद्रिय प्राण सब कुछ, मात्रार्थम च भावार्थम च, भावार्थम च बोले उन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनके द्वारा भोगे, और भावार्थम उसी प्रकार भाव रोग में पड़े रहे, अथवा वो कहते हैं भावार्थम च आत्मने कल्पना च, अथवा उन भगवत लाभ के लिए उनको लगाए, वो तो मनुष्य के लिए है। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्ति रस पात्र, दुई भागवत दिया चैतन्य महाप्रभु ने, कृपा इतना किया है कि हमको दो भागवत दिया, एक भागवत शास्त्र बड़ शास्त्र भागवत के रूप में, और दूसरा एक भक्त भागवत जिनके मुख से इस भागवत को ग्रहण करना चाहिए। ये दो भागवत देके महाप्रभु इन भक्ति की शिक्षा प्रॉपर जीवों के ऊपर कृपा करके दिया है। आज इन दूसरे भागवत जो है वो दूसरे भागवत का आज तिरुभाव तिथि है, उनके विषय में भी हम लोग कुछ पाठ कर लेते हैं। हम लोग ये जाते हैं उनकी जीवनी के अंतर्गत, श्री वृंदावन दास ठाकुर 82 साल इस जगत में रहे, उनकी एकमात्र कृति वो चैतन्य भागवत है, लेकिन उनमें समस्त शास्त्रों का इस प्रकार समन्वय करके उन्होंने दिया है कि जो एक बार चैतन्य भागवत का पाठ करेगा वो चैतन्य भक्त बने बगैर रह नहीं सकता है। ये अद्भुत ग्रंथ है, एक ही उन्होंने ग्रंथ की रचना की, लेकिन ऐसे ग्रंथ की उन्होंने रचना किया है जो अद्भुत ग्रंथ है। कहते उनकी जीवनी का लिखते हैं, सबसे पहले वो एक श्लोक लिखते हैं, कहते हैं वेद व्यासो ये आसिद दासो वृंदावनो अर्जुना सखा य कुसुमा पीड़ कार्य तत्तम समाविष्ट। कहते वृंदावन दास ठाकुर और कोई नहीं जिन्होंने इस भागवत की रचना की और समस्त शास्त्रों के लिपिबद्ध किया, वो वेद व्यास महाराज स्वयं है। और कहते किसी कार्यवश किसी प्रयोजन के लिए ये जो कुसुमापीड़ जो सखा है श्री कृष्ण लीला में वो भी उनमें प्रवेश एक अंश से प्रवेश किया है, इन दोनों का समन्वय ये एक मात्र ठाकुर के उन मनसा में मिलता है, उनके चरित्र में ये सब मिलता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि इन उनका जन्म वृंदावन दास ठाकुर का जन्म वो कहते हैं उन 1429 में शकाब्द वैशाखी कृष्णा द्वादशी के दिन के माम गाछी और किसी किसी के मत छे कुमार हट्ट दोनों जन्म स्थान लिखा गया है, इसमें उनका आविर्भाव हुआ था। इनके पिता का नाम श्री वैकुंठ था और माता का नाम था सब लोग जानते नारायणी, क्योंकि महाप्रभु की अत्यंत कृपा पात्र उन माता जिनकी है। तो देखिए महाभागवत लोग आते हैं उसी के घर में आते हैं, है ना, जो इतने महाभागवत है उनके ही घर में उनका अवतार होता है उन महाभागवतों का, ये यहाँ बताया गया है। तो आविर्भूत है उनके पिता कहते हैं, लेकिन श्री वैकुंठनाथ विप्र एवं माता का कहते उन नाम नारायणी देवी था और श्रीमती नारायणी देवी चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त श्री निवास की भतीजी थे। उनके जीवनीकार कुछ एक बात लिखते हैं कि उनके पूर्वज सिंहट में रहते थे, किसके पूर्वज, श्रीवास ठाकुर के। तो वो वहां कुमारट में रहते थे और बाद में ये लोग नवदीप में अपना निवास स्थान बदली किया, इसलिए तो ये वहां रहने के लिए आए। तो ये शिवास पंडित के उन बड़े भाई नलील पंडित की पुत्री थी श्री नारायण जी, लेकिन उन नलील का देहांत हो गया, वो पांच भाई थे उनका देहांत हो गया, इसलिए चैतन्य भागवत में चैतन्य चित्रामृत में उनका कोई वर्णन ज्यादा नहीं आता है। तो उनकी वो पुत्री थी, इनके संबंध में उन गौर गुणोदेश दीपिका में भी एक श्लोक मिलता है, कवि कर्णपुंड में लिखा है कि कृष्ण उच्चिष्ट मुंजान सेम नारायणी माता अंबिकाया स्वसा याचित नामनी शिल किलंबिका। कृष्ण लीला में जो श्री कृष्ण के कुछ दात्रियां उनको दूध पिलाने वाली वो कुछ लेडीज रहती कुछ माताएं रहती थी वहां, उसमें ये अंबिका और किलंबिका दोनों बहन थी। तो उसमें से किलंबिका जो है तो वही उन सदैव भगवान का उच्चिष्ट भोग करती थी और वही इन गौर लीलायन में नारायणी के नाम से वो ये पर विख्यात हुई। चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्री वो बनी। उनका एक कारण बता रहे कुछ जीवनीकार लिखते हैं कि जब उन शिवास आंगन महाप्रभु जब गया से आकर के उन संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ किया तो उस समय उन्होंने शिवास ठाकुर का घर चूच किया, और शिवास आंगन में रात्रि भर कीर्तन होता था। तो वहां पर जैसे कीर्तन चालू किया तो उन कीर्तन से अगल बगल वाले सब बोर हो गए, इतना बोर हो गए कि ये लोग सोते भी नहीं, दूसरों को भी सोने नहीं देते हैं। तो कुछ लोग कहने लगे, अरे भाई ये कंप्लेंट पहुंच गया है काजी के पास, या बादशाह के पास कंप्लेंट पहुंच गया है, और बादशाह कल ही सैन्य भेज करके या अपने उन कुछ सिपाहियों को भेज करके ये श्रीनिवास को, ये निमाई पंडित को सबको उठा करके ले जाएंगे, जितना भी कीर्तनिया उनके साथ है ना सबको उठा करके ले जाएंगे। श्रीनिवास पंडित को थोड़ा लगा या डर लगा। तो महाप्रभु उनके घर में जाकर के श्रीनिवास को समझाया, डरने की आवश्यकता नहीं है, अब भय क्यों करते हैं, कीर्तन चालू रखिए और कीर्तन जोर से कीजिए, जितना वो लोग कहते उससे ज्यादा डबल जोश में कीर्तन चालू होना चाहिए, है ना, उनको बोलने दो। लेकिन श्रीनिवास का डर नहीं जा रहा था। तो बोले देखो श्रीनिवास, अगर बादशाह मुझे लेके जाएगा ना तो सबसे पहले मैं उनको कहूंगा कि तुम्हारे जितने भी काजी मौलाना है उन सबको लाओ, हम परीक्षा करेंगे आपका धर्म सत्य धर्म है कि हमारा। तो कैसे परीक्षा करेंगे, बोलते हैं उनके हाथी घोड़ा जो कुछ भी है उनको मैं रुलाऊंगा कृष्ण प्रेम दे करके। तुम जानते हो श्रीनिवास कि उनमें उनके धर्म में कोई ऐसी ताकत नहीं है कोई हाथी घोड़ों को रुला सके। लेकिन अभी प्रकाश तो हुआ नहीं था, महाप्रभु ने कोई ऐसा प्रकट प्रकाश नहीं किया था, विश्वास नहीं आ रहा था श्रीनिवास पंडित को। तो भगवान तो गटगट व्यापी है, जान गए कि इनको विश्वास नहीं आ रहा। तो नारायणी घूम रही थी, बोले बेटा नारायणी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नारायणी को पुकारा। श्रीनिवास पंडित को कुछ विश्वास नहीं हो रहा है, नारायणी को बुला करके और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जरा बेटा नाच करके कृष्ण कीर्तन करो और रो तो दा। और नारायणी लगी रोने, वो कृष्ण कीर्तन कीर्तन करते हुए, और श्रीनिवास को विश्वास हो गया कि कोई बात नहीं अभी कीर्तन चालू रखा जाए, है ना। तो इस प्रकार की कृपा पात्री है। एक बार फिर महाप्रकाश जब उनके घर में हो रहा तब भी उन नारायणी को उच्चिष्ट प्रसाद दिया, सबको दिया था महाप्रभु ने, लेकिन जो भी बचा कुचा था वो सब कुछ नारायण को दिया। और नारायण उनको खा करके कृष्ण प्रेम में इतना नर्तन करने लगी, इतना नर्तन करने लगी। तो वो कहते हैं कि इसके विषय में ये कहा जाता है, एक बहुत सुंदर श्लोक दिया गया इसमें, कहते श्री नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीला त्यो हयन आदि व्यास कह, बहुत कुछ बातें इसमें लिखा है। तो वृंदावन दास ठाकुर की ये जो माँ का लीला है वो, क्योंकि ब्रज लीला में वो उनके स्तन दात्री उन अंबिका की बहन थी, इसलिए हमेश वो भगवान के उच्चिष्ट किलंबिका हमेश भगवान को उच्चिष्ट पान खाती थी। तो उसी प्रकार महाप्रभु ने उनको उच्चिष्ट प्रदान किया। लेकिन कहते हैं कि आज तक, मैं श्लोक था इसमें मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, आज तक कहते हैं कि वो वैष्णवों को आज तक सुनाई देता है। जब वैष्णव कीर्तन करते हैं तो कहते साथ साथ में नारायणी का उच्च स्वर से गान वो वही कीर्तन में आज तक अद्यावधि अपि, ऐसा लिखा है श्लोक में। आज भी आज तक जो उनको जो लोग पात्र है योग्य पात्र उनको उन नारायणी का गान या रोना वो सुनाई पड़ता है। प्रमाण तो यहां दिया गया है लेकिन कुछ खैर। तो ऐसे उनके यहां उनका कहते हैं उनका विवाह उन श्रीनिवास पंडित ने उन वैकुंठ के साथ किया था, श्री वैकुंठ के साथ। लेकिन उनका गर्भाधान जब हुआ उनके बाद 4-5 महीने के बाद वो वैकुंठ गमन हो गया उनका। और वृंदावन दास ठाकुर उसी प्रकार उनके पिता चले गए तो ये लोग उन कुमार हट से वापस आए। उन शिवास पंडित ने अपने पास रख लिया नारायणी को और उनके पुत्र को। और बाद में उनको मामगाछी जो शिवास पंडित की पत्नी मालिनी का मैका था तो मामगाछी भेज दिया और वहां पर उनका विद्या अध्ययन हुआ। और उस समय उन विद्या का अड्डा एकमात्र नवदीप था। आज से 500 साल पूर्व काशीवासी कुछ नहीं था उस टाइम। उनका ही बोलबाला था नवदीप का। बड़े बड़े पंडित वहां पर रहते थे तो वहीं पर उनका सुंदर अध्ययन हुआ। उन अध्ययन समापन करके श्री वृंदावन दास ठाकुर उनके बीच में कहते हैं कि वो 1457 शताब्दी में चैतन्य भागवत नामक उनके अतुलनीय एक रचना किया उन्होंने। लेकिन उनके विषय में ये कहते हैं कि चैतन्य मगलियो करिल रचन भागवत कृष्ण लीला वर्णन वेद व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास कहते तो हो गया कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास ठीक। तो कहते चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास मधुर करिया लीला करिया रचन ग्रंथ विस्तार भय छाणिला ये स्थान शेषी स्थान किछु करीब व्याख्यान है। तो ये चैतन्य चेतावन कविराज गोस्वामी उसके विषय में कहते हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर उन ग्रंथ को बड़ा हो जाने से डर के कुछ कुछ सूत्र के रूप में लीला लिख दिया है उन लीलाओं का मैं वर्णन करूंगा। लेकिन कहते कि यह हर श्रवण न से सर्व अमंगल चैतन्य निताई जाते जानी महिमा। कहते इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है कि उनको केवल श्रवण मात्र से कोई व्यक्ति चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के महिमा को समझ जाएगा। वो कहते कि याते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत सीमा और साथ साथ में उन कृष्ण भक्ति की उन चरम परम सीमा तक उन कृष्ण भक्ति का जो जो सिद्धांत था इन समस्त सिद्धांतों को उन्होंने इस ग्रंथ में रख दिया। भागवत यद भक्ति सिद्धांत सार लिखिया जन यहा जानी करिया उद्धार। कहते चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन शेह महा वैष्णव है तत्क्षण। कहते अगर महापाखंडी कोई है तो इस प्रकार उन भक्ति सिद्धांतों को सुंदर तरीके से निरूपण किया है कि कोई यवन भी उनका पाठ कर लेता है तो महाभागवत बन जाता है। तच्चन मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य। कहते हैं कि ऐसा ग्रंथ कोई मनुष्य का बुद्धा नहीं है। वस्तु तो चैतन्य महाप्रभु ने इन वृंदावन दास की जीभ पर बैठ करके अपने चरित्र को लिखाया है। ये कहते अत्यंत धन्य वो ग्रंथ है। और वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार ऐसे ग्रंथ करीती हूँ। तारिला संसार नारायणी चैतन्य उष्टित उच्चिष्ट भोजन तार गर्भ जन्मिला दास वृंदावन। क्योंकि उनका कारण है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्री उन नारायणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इनको कोई आश्चर्य का बात भी नहीं है कि उनके द्वारा इतना सुंदर ग्रंथ की रचना और भागवतम के चरम सिद्धांतमय जो भक्ति का चरम सिद्धांत है उन एक एक छोटे छोटे बात को निरूपण किया है। और अनेक भक्तों के भाव को भी वो साथ रख करके इन चैतन्य भागवत का रचना किया है। इनको कोई भी पाठ कर लेता है। हमको तो कहना नहीं पड़ेगा। देखिए अभी भी ज्यादा नहीं एक 2 मिनट मैंने नहीं लिया है। मैं कभी लेट नहीं करता हूं। आज नहीं बोलना भी नहीं पड़ेगा। तार कहते तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन यार श्रवण शुद्ध कैलती भुवन। कहते हैं कि उनके द्वारा ये चैतन्य चरित लिखा गया है या वृंदावन चैतन्य भागवत का रचना लिखा है। कहते यार श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन ये त्रिलोकी जिनसे पावन हो सकती है। लेकिन हाय रे हमारा जीवन अभी भी पावन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग उनका आस्वादन भी नहीं करते। करते भी है तो हमारे हृदय में दूसरी 10 प्रकार की इच्छा भी बनी रहती है इसलिए हमारा नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। भक्त भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। गंध भागवत की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। निदाई गौरा हरि ब्रह्मानंदे।